समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री इब्राहिम के सम्मान में प्रधानमंत्री आज दोपहर भोज का भी आयोजन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में मलेशिया के प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। श्री इब्राहिम कल रात 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पोलैंड में श्री नरेंद्र मोदी वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रीज डूडा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर शुक्रवार को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी ऐतिहासिक है क्योंकि राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं। भारत और जापान आज दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योकू कामिकावा बैठक में भाग लेंगी। वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और उनके जापानी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक निर्धारित है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। भारत यात्रा पर आए जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा की कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। जापान के दोनों मंत्री 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए कल नई दिल्ली पहुंचे। भारत आने से पहले जापान की विदेश मंत्री कामिकावा ने कहा कि भारत का सामरिक महत्व जितना अधिक अब है उतना पहले कभी नहीं रहा। लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपानकोंग 19वें सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन नई दिल्ली में 8 से 22 अगस्त तक चलेगा। भारत और यूरोपीय संघ कल से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत यूई ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम से बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करने के नए उपाय तलाशना है। नई दिल्ली में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में दक्षिण एशिया और यूरोप के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 18 सितम्बर को होगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना में पूरे देश को झकझोर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पहले से ही हो रही है। इस मामले में पुलिस के तौर तरीकों पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी में कल 27 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व मंत्री उबैदुल कादर, रशीद खान मेनन और हसनुल हक इनू शामिल हैं। इन पर कथित नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए शहरियार हसन अलवी के पिता मोहम्मद अबुल हसन ने शेख हसीना सहित उनके 27 साथियों और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईसीटी की जांच एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलम में अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक के बाद बंधकों की रिहाई के संबंध में एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। उनके कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बंधकों को छोड़ने के संबंध में अमरीका के उस प्रस्ताव को लेकर इसराइल की प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसमें इसराइल की सुरक्षा आवश्यकताओं की भी चर्चा की गई। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, पश्चिम, पूर्वी और मध्य भाग में अगले 4 दिन तक तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी कल मूसलाधार बारिश हो सकती है। विभाग ने जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और इस बीच दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।